राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भीनाशर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
एक प्रश्न आया है कि हम सभी धर्मों के सत्संग में जाते हैं, वो गुरुद्वारे जाते हैं, गोविंद भवन जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, अरे जाते हैं तो क्या करना चाहिए। देखो ये जगह जगह जो जाते हैं ये वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं चाहते। सुन लेते हैं कि भी किसी का निरादर मत करो, सभी धर्म एक है, सब प्रेम से रहो, ये बात दूसरी है। और जगह जगह जाना, मस्जिद में भी जाना और धर्म में भी जाना, ये जाना उपासक के लिए जो तत्व की प्राप्ति चाहता है उसके लिए इतनी काम की चीज नहीं है। जो अपना कल्याण चाहता है वो अपने धर्म में भी ठीक तरह से स्थित नहीं होता तो भटक जाता है। जैसे राम जी का उपासक है वो कृष्ण भगवान की बात सुनता है तो भी उनमें संदेह हो जाता है, जो कि विरुद्ध नहीं है, मैं कभी विरुद्ध मानता भी नहीं, परंतु साधारण बुद्धि वालों के मन में आ जाए कि हम राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, शक्ति को माने, गणेश को माने, हम विष्णु भगवान को माने, किसको माने, तो सब जगह की बात सुनते सुनते उनके मन में एक निश्चय नहीं होता। जब एक सनातन सिद्धांत की बात ही सुनते हैं उनके लिए भी एक निष्ठा चाहिए। अब दूसरे धर्मों में जाएंगे तो उनकी क्या दशा होगी, वे निर्णय कर नहीं सकेंगे कि हमारे लिए कौन सा वस्तु ठीक है। तो जो निर्णय नहीं करते हैं, कल्याण नहीं चाहते हैं, उनकी ये दशा है। जो अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उसको तो अपने मार्ग के अनुसार ही चलना चाहिए। इसमें भी दो विभाग है, एक तो विभाग है अपना कल्याण हो ये, और एक विभाग है अगर हमारी संप्रदाय है ये, हमारा कल्याण हो, ऐसे पुरुष की चाल दूजी होती है और हमारी संप्रदाय है इसकी चाल दूजी होती है। ये बहुत अच्छी बात पूछी, ऐसी बात पूछे तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। देखो हमारा मत है, हमारा ही हमारी संप्रदाय है, तो ज्यादा आदमी संप्रदायों के पक्षपात में रहते हैं, वे वास्तविक तत्व को नहीं जान पाते, अपने संप्रदाय के तत्व को भी ठीक तरह से नहीं जानते। वो जय बोलने वाते हैं, साथ साथ जय बोलते हैं और पक्षपात करते हैं। वे आदमी आपस में लड़ते हैं, ये जो आज लोग कह रहे हैं कि ये धर्म की अनेकता होने के कारण से लड़ाई हुई है, वो लड़ाई धर्म की अनेक प्रकार की पद्धतियों से नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। वे अपने पद्धति का आचरण नहीं करते और कोई अभिमान करते हैं अपने संप्रदाय का, उनमें लड़ाई होती है। खूब ध्यान देकर सुने, मेरे मन में आती ऐसी बातें आपके आती तो मेरे को पूछो। मेरे तो एक आज एक आंख खुली है, आंख ख्याल हुआ है, अरे क्या कर रहे हैं आप, किस तरह जा रहे हैं। अपनी पद्धति है उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, दूसरे को नीचा न समझना, निंदा न करना, तिरस्कार न करना, ये बात ठीक है। परंतु अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, उनके लिए तो अपनी पद्धति के अनुसार ही चलना बढ़िया होता है। वे पद्धतियों में पक्षपात होकर चलते हैं, उनके नहीं। जो अभी कल्याण होता है, अभी परमात्मा की प्राप्ति होती है, अभी जीव की मुक्ति होती है, ये सिद्धांत मानना चाहिए। जो सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। आज बातें मेरे पास बहुत आई है, कई तो मैं कहूंगा, सब तो पूरी होगी कि नहीं होगी भगवान जाने। बातें बहुत बढ़िया पूछी है, ऐसे आप पूछा करो तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक विचार करो, आप खूब ध्यान देकर देखो। एक मत कहता है कि अभी कल्याण होता है, एक मत कहता है कि अभी कल्याण नहीं होता। ये दो मत आए, तो दोनों मत जो विरोधी है वे दोनों सिद्ध नहीं होंगे, वास्तव में एक ही सिद्ध होगा। अगर कल्याण होता है तब तो कल्याण हो जाएगा, और कायदा अभी कल्याण नहीं होता है तो कल्याण साधन करने वालों का भी नहीं होगा, और कल्याण के साधन नहीं करने वालों के नहीं होगा। खूब ध्यान देकर सुने, वास्तव में दो जो विरोधी बातें हैं ना, विरोधी नहीं हो गए तो दो तीन चार कई सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कई राम जी का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, कई शिव जी का भक्त है, कई विष्णु, कई सूर्य का भक्त है, कई शक्ति का भक्त है, कई गणेश जी का भक्त है, तो इनके विरोध नहीं होगा, सबका कल्याण हो जाएगा। पर कल्याण अभी होता है, अभी कल्याण नहीं होता, ये दोनों बात नहीं चलेगी, इसमें एक ही सिद्ध होगी। इस भेद को समझेगा नहीं, इसका तो मेरे को पता नहीं है, नहीं समझो तो फिर मेरे से पूछे। मानो जहां दो विरोध आते हैं, कल्याण होता है कल्याण नहीं होता है, इसमें तो बात दूसरी है। वे दूसरी बात वो मैं कह रहा हूं, अभी ध्यान देकर सुने। अगर ये सिद्धांत सच्चा है कि अभी कल्याण नहीं होता, जो कल्याण होता है ऐसा मानते हैं उनका भी कल्याण नहीं होगा, क्या कल्याण होते ही नहीं, और जो कल्याण नहीं होता मानते उनका भी होता ही नहीं, उनका तो होता ही कैसे, वो मानते ही नहीं। पर जो मानते हैं वे गलती में रहेंगे, क्यों कल्याण होना है ही नहीं, तो कल्याण माने उनका भी नहीं होगा, न माने उनका भी नहीं होगा। परंतु कहीं कल्याण होता है ये बात सच्ची हो जाएगी तो जो कल्याण होता है उनका तो कल्याण हो जाएगा, ऐसे कल्याण होता ही नहीं ऐसा मानने वाला कल्याण कैसे हो जाएगा। खूब सिद्धांत है, आप इसको ख्याल पूर्वक मेरी बात को सुनना, सबसे मेरी प्रार्थना है विशेषता से सुनना। अब कल्याण होता है नहीं होता है, उसमें अगर नहीं होता है तो दोनों बराबर रहेंगे, जो कल्याण होता है मानने वाले भूल में रहेंगे, और कल्याण नहीं होता है वो सही रास्ते रहेंगे, पर नतीजा बराबर ही होगा, नतीजे में फर्क नहीं पड़ेगा। पर कहीं कल्याण होता है ये बात सच्ची निकली आई तो जो कल्याण मानते हैं उनका तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानते उनका कल्याण कैसे हो जाएगा, वे मानते ही नहीं तो उनका कल्याण होगा ही नहीं, तो वे घाटे में रहेगा। तो दो बातें जहां विरोधी होती है वहां ये विचार करना है कि कल्याण होता है, ये बात अगर सच्ची निकली आवे तो कल्याण होता ही नहीं ऐसा मानने वाले बहुत घाटे में रहेंगे। खूब ख्याल करें आप सुनो, तो फिर जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए भी उचित यही है कि कल्याण आज मानते हैं उसी पक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि कल्याण में हमारी बारी आ जाएगी, और नहीं तो नहीं कल्याण होता है तो भी नहीं कल्याण मानते उनसे कम तो हम रहेंगे ही नहीं, उनसे कम कैसे रहेंगे। हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, तो कुछ तो ठीक ही होगा, कल्याण नष्ट ही, पर घाटे में नहीं रहेंगे, परंतु मानते कल्याण होगा ही नहीं, होता ही नहीं है, तब तो बरोबर रहेंगे। कल्याण होता है ये बात सही निकली आई तो जो नहीं कल्याण होता ऐसा मानने वाले बहुत घाटे में रहेंगे। जैसे कोई रोग हो जाए, एक वैद्य डॉक्टर कहते हैं ये तो रोग अब मिटेगा ही नहीं, और एक कहते हैं भाई रोग मिट सकता है, तो रोगी को चाहिए रोग मिट सकता है उसी का ही पक्ष ले, क्यों नहीं मिटता है वो तो नहीं मिटेगा, क्या जवाब, हम कम थोड़े ही रहेंगे, परंतु अगर मिटता हो तो हमारा मिट जाएगा, अगर नहीं मिटता है मानेंगे तो उसका मिटेगा ही कैसे, वो इलाज ही नहीं करेगा। तो दो पक्ष विरुद्ध हो उसमें तो अपना कल्याण हो वो पक्ष ही लेना चाहिए जो अपना कल्याण से आता है, वो पक्ष नहीं लेना चाहिए अगर कल्याण होता ही नहीं, पहले ही हाथ धो बैठे सफाई उसे तो अस्तित्व कर दिया, तो इस पक्ष में अपना क्या फायदा हुआ। हम तटस्थ और बात करते हैं, किसी पक्ष की बात नहीं कहते हैं, तटस्थ और युक्ति संगत बात कहते हैं जो सबको मान्य होती है, शास्त्रों की तो हम अपने शास्त्र को मानते हुए अपने शास्त्र को मानेंगे, पर युक्ति तो सबको माननी पड़ेगी। तो ऐसे विरोध में तो जिसका कल्याण होता है ऐसा मानते हैं वही पक्ष सिद्ध है, कहते हमारे तो एक दवाई सिद्ध करो तुम्हारे हो जाएगा रोग मिट जाएगा, तो हमें वही लेना चाहिए, तो नहीं मिटता ही नहीं है उन बेचारे हम क्या करेंगे, हम तो रोग ही रहेंगे, फिर मिटेगा ही नहीं रोग। तो ऐसे विरोधी बात में तो ऐसा करना चाहिए। अब बात रही संप्रदायों की, उसमें दो बातें हैं, संप्रदाय में चलने वाले हैं उनको एक निष्ठ होना चाहिए, जो कल्याण होता हो और होता है इस पक्ष को लेकर एक निष्ठ होना चाहिए। जैसे राम जी का भजन करते हैं तो राम के नाम का जप करना चाहिए और राम जी का ही ध्यान करना चाहिए, रामायण ही सुनना चाहिए, ध्यान दिया ये बात। अब इसमें और बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुने, हम राम जी के भक्त हैं, राम जी का ही ध्यान करते हैं, रामायण ही सुनते हैं, रामायण ही पढ़ते हैं, राम 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 करते हैं, अब कहीं गीता सुनने का मौका आ जाए तो, कहीं कृष्ण भगवान के नाम सुनने आ जाए तो, कहीं कृष्ण भगवान का कीर्तन होता हो तो हम क्या करें, और हम राम जी का ध्यान करते हैं कृष्ण भगवान का ध्यान आ जाए मन में तो क्या करें। ध्यान देकर सुनना बात बड़ी काम की चीज है उपासना करने वालों के लिए। तो ऐसा ध्यान आ जाए तो अपने ध्यान तो करना है राम जी का ही, परंतु कृष्ण जी का ध्यान आ जाए तो बहुत राजी होना चाहिए, बहुत प्रसन्न होना चाहिए। कहते क्यों, कहें हम राम जी के भक्त हैं तो राम जी आज स्वयं अपनी मर्जी से कृष्ण रूप से आए हैं, इस वास्ते राजी होना है, मगर ध्यान तो हम राम जी का ही करेंगे, जब करेंगे जब सुनेंगे तो राम जी का ही करेंगे, हम कृष्ण जी का नहीं करेंगे, परंतु अचानक ध्यान उसका आ जाए तो बहुत राजी होना चाहिए कि हमारे मन से हम राम जी का ध्यान करते हैं, आज राम जी ही कृष्ण रूप से आए हैं तो उनका आदर ज्यादा करना चाहिए राम जी की अपेक्षा भी, क्योंकि ये राम जी अपनी मर्जी से कृष्ण रूप होकर आए हैं, हमारी मर्जी से राम जी की ध्यान करें तो उस समय तो कृष्ण का आदर ज्यादा करना, परंतु फिर अपना करेंगे तो राम जी का ही ध्यान करेंगे हम तो। ये ध्यान से सुनना बड़ी मार्मिक बात है, क्यों कृष्ण का अधिक क्यों करे कि राम जी ही कृष्ण बने हैं, राम जी खुद ही कृष्ण बने हैं, राम अवतार हुआ कृष्ण था, 24 अवतार हुए हैं, वे 24 अवतार भी एक ही है जिसमें भी निर्णय किया गया है भागवत में कि कलयुग में किसकी प्रधानता होगी 24 अवतारों में, तो त्यक्त्वा सुदृष्टिर्, ये बात महापुरुवंदे महापुरुषे शरणारविंदम दो श्लोक आए हैं, इसमें निर्णय किया है कि कलयुग में राम और कृष्ण की दो की प्रधानता होगी, दोनों एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। तो हम राम जी के भक्त हैं, हम अनुष्ठान अपना तो राम जी का ही करेंगे, मगर कृष्ण जी आज आदर ज्यादा करेंगे क्योंकि राम जी तो कृष्ण बने हैं। ख्याल करो आप, कृष्ण भगवान का अवतार पीछे हुआ है, राम जी का अवतार पहले हुआ है, राम जी का भजन करते हो कृष्ण आज, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारे राम जी ही कृष्ण बने हैं। अब एक बहुत मार्मिक बात बताऊं, इसमें भागवत में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वर्णन आता है, उसमें प्रहलाद जी महाराज वो भगवान का भजन करते हैं, तो वहां एक शब्द आया बड़ा विचित्र लगा मेरे को पढ़ने में आश्चर्य आवाज जैसी बात आई, कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा लिखा है, कृष्ण रूपी ग्रह से गृहित हो गए, तो कृष्ण ने ये आदि दैत्य हुए हैं, 27 कल्प है ये, जिसमें पहले कल्प में आदि दैत्य हुए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उसमें पहले मधुकटिप हुए हैं, पीछे ये दैत्य हुए हैं सतयुग के, तो बोलो सतयुग के ये हुए तो सतयुग त्रेता द्वापर कलि चार युग ये बीत गए, तो ये पुराना हुआ, राम जी का अवतार हुआ त्रेता में और कृष्ण का अवतार द्वापर में, तो वहां गृहित आत्मा कृष्ण नाम लिया है, वहां भागवत में आशा भी कि इस प्रहलाद को तो एक कृष्ण रूपी भूत लग गया, उस ग्रह से गृहित हो गया, ये ठीक नहीं है, हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रार्थना करी कि तुम क्या करता हमारे बैरी का नाम लेता है, परंतु प्रहलाद जी की ये बात हुई। अब देखो कृष्ण तो अभी हुए और वो आज देखते है पुराण, तो कितना वर्ष बीत गया, लाखों वर्ष बीत गए, तो वहां भी कृष्ण नाम है, तो ये राम और कृष्ण अवतार अनादिकाल से चली आ रही है। कई लोग कहते हैं कि राम नाम तो राम जी के अवतार के बाद हुआ, राम जी का अवतार तो अभी हुआ, तो राम राम से कल्याण नहीं होगा, कई ऐसा कहते हैं, वो बड़ी भूल करते हैं। राम ना अवतार, ये राम जी का अवतार हुआ, वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज अब बच्चों का नामकरण करो, तो वहां कहा है कि आप जो गुनी रखा आपने विचार कर रखा वो नाम धरिए, तो प्रहलाद जी ने विचार करके अपना नाम रखा था वो नाम धरा है, और राम जी का नाम उनसे ही हुआ है ऐसा नहीं है। कई जगह संतों की वाणी में आते हैं कि प्रहलाद ने राम नाम रचा, पता था है ऐसा एक, अब याद नहीं आया है, तो राम नाम रटा प्रहलाद जी ने, बहुत पदों में आता है राम नाम रटा है, और ये तो भागवत में आया कृष्ण कृष्ण नाम, तो राम नाम अनादि है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो पर ब्रह्मा विधीयते, उपनिषदों में आ गए सब, जो सबसे पहले वेद है उन वेदों में आता है, रमन्ते योगिनो नन्ते, राम तो अपने उपनिषद में आता है, बड़े शनकादिकों की आदि बातें आती है, तो राम जी का नाम अनादि है, राम अवतार तो अब हुआ है, और ऐसे राम अवतार कई बार हुआ है, प्रतिकल्प में राम अवतार होता है, राम अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अनंतवार उपदेश अवतार हुआ राम जी का, वो अवतार बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं, अभी मेरे पास बहुत ही बातें हैं वो कहनी है। या फिर आप सुनना चाहो तो फिर पूछ लेना। तो इतने ऐसे राम जी कृष्ण एक होते हुए भी निष्ठा अपनी राम जी की रखो, कृष्ण ने तो कृष्ण की निष्ठा रखो, कृष्ण का भजन ध्यान करते हुए राम जी का ध्यान आ जाए तो उस समय राम जी का आदर विशेष करो, पर करेंगे तो हम कृष्ण का ही ध्यान, कृष्ण का ही भजन करेंगे। ऐसी ये उपासना की पद्धति है, उससे एक निष्ठा बनेगी, और जगह जगह करोगे तो निष्ठा नहीं बनेगी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कोई सी निष्ठा नहीं बनेगी। जो उद्धार चाहता है उसके लिए एक निष्ठा करनी अच्छी है, ये बिल्कुल एक है दो नहीं है। कीर्तन अगर कृष्ण भगवान का होता हो तो राम जी के भक्त भी कृष्ण का कीर्तन करो साथ में साथ, हरे राम राम कीर्तन, ये सब के लिए तीनों का है, विष्णु नाम का है, कृष्ण नाम ना है, राम नाम, तीनों का नाम है इसमें। तो इसमें राम जी के भक्त भी करो, कृष्ण भक्त के भक्त भी करो, पर आप अपने उपासना करो तो कृष्ण भक्त को कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, राम जी को राम जी का ही ध्यान करना चाहिए। अब वो अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह खुल्ला कैसे करेगा। हाँ एक बात इसमें बहुत मार्मिक और बताता हूँ, अल्लाह अकबर करके जोर से कोई पुकारे तो मन में राजी होना चाहिए, किस बात को लेकर, हमारे राम जी का ही नाम ये ले रहे हैं, क्योंकि उपास देव तो हमारे इष्ट एक ये राम जी है, इस वास्ते ये अपनी भाषा में अल्लाह अकबर कह रहे हैं। तो भाषा से पुकार से जैसे पानी है उसको वाटर कह दे तो क्या प्यास नहीं मिटेगी, वारी कह दे कोई तेल आप कह दे तो क्या पानी प्यास नहीं मिटेगी। मान ये उसमें नाम लेते हैं उस संप्रदाय वाले, तो उनमें दूसरों की आवाज अल्लाह खुदा की हो तो उसमें राजी होगा, बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्रभु का नाम अल्लाह भी है जिस नाम से पुकारे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथे वदाम्यहम्, तो उसमें राजी होना चाहिए, पर हमारे को अल्लाह नाम नहीं लाना चाहिए। अल्लाह और रामदाव कर तो वर्ण शंकर जो उपासना शंकर होगा, माँ किसी जात की, बाप किसी जात का, बेटा होगा किसी जात का होगा, वो वर्ण शंकर होता है। ऐसे दोनों को मिलाना है कि उपासना शंकर है, इससे सिद्धि नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति बात ऐसा कहेगा भी नहीं, ये तो वर्ण शंकर है, उपासना शंकर है, उपासना शंकर नहीं होना चाहिए अगर कल्याण चाहते हो तो। इस वास्ते एक अपनी उपासना एक पद्धति उसमें तत्परता से लगो तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं हम तो मस्जिद में ही जाते हैं वहां थी, तो वो जाना ठीक नहीं है, परंतु मुसलमानों को बेठीक समझना, द्वेष करना, बैर रखना, वो उपासना उन्हें खराब है, ऐसा निंदा नहीं करना किसी की भी, किसी के चित्त दुख है जैसी बात नहीं करनी, परंतु अपने ढुलमिल हो जाओगे तो क्या उपासना करोगे। बेशिया का पुत्र पिता किसको कहेगा, कौन है पिता तेरा, क्या होगा ढंग आपका। इस वास्ते अपने उपासना जो कल्याण चाहते हैं उनको कल्याण मार्ग में चलने वाली एक निष्ठा रख करके उसे चलना चाहिए, उसमें वर्ण शंकर नहीं करना, उपासना शंकर, वर्ण शंकर, आश्रम शंकर और आश्रम शंकर, वर्ण शंकर आदि नहीं करना शंकर का, ये दोष दो जो मिल जाते हैं, दो वर्णों को एक मिल जाते हैं वो होता है। ऐसे आजकल रोगों में परीक्षा नहीं होती है, रोगों की क्यों नहीं होती है, पहले रोग होते थे वात पित्त कफ से, आज रोग हो गए विदेशियों की दूसरी बात है, हमारी दूसरी बात है, दोनों का खान पान वो होने से जो संकर रोग होते हैं दोनों मिल करके उसकी दवाई होने मुश्किल है, एक रोग उस दवाई हो जाए। अब हरेक का जूठन खाते हैं, हरेक की वो चाय पीते हैं, उसी कब से साइस रोगी के पीते हैं, इससे ही वो दूसरे रोग जाएगा तो वो भी पीते हैं, तो दोनों रोगों के परमाणु मिलकर के तीसरा रोग पैदा होगा, वो असाध्य हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि सब खानों की एक ही साथ में करो, ये ऊपर से एकता दिखती है मैंने बड़ी हानिकारक है, बहुत ही नुकसान करने वाली है। अंतर्देशीय पत्र आता था उसमें मैंने अभी पढ़ा, थोड़े दिनों की बात है कि छुआछूत मेटो, अब वो छोड़ दिया है। जब ये पता लगा कि आपस में खान पान से और स्त्री संग से ये रोग पैदा होते हैं, वो रोग असाध्य होते हैं, उसकी दवाई अभी तक मिली नहीं है ऐसा हमने सुना है, तो दोनों मिलकर रोग तीसरा रोग पैदा होगा, उसका इलाज कैसे करेंगे, कौन सा रोग है क्या पता, उसका नाम ही और ही होगा तो वर्ण शंकर की तरह होगा। तो खान पान एक करके एकता कर देनी, ये एकता एकता नहीं है। जो व्यवहार में एकता हो जाए ये प्रकृति की एकता प्रलय करने वाली है, सत्यानाश करने वाली है। मन की ये दो पड़ा है ये पतन करने वाली चीज है। तुम दूसरे हम दूसरे हैं ये नहीं, हम परमात्मा के अंश है साक्षात। जैसे हम परमात्मा के अंश है ऐसे मुसलमान भी परमात्मा के अंश है, ईसाई भी परमात्मा के अंश है। इसमें एकता करो कल्याण होगा, और खान पान में रेटी वेटी बर्ताव होगा तो पतन होगा और महाप्रलय होगा। प्रकृति के एक में प्रलय होता है और प्रकृति विषमावस्था में संसार होता है। तो प्रकृति की विषमता में समगा तो प्रलय हो जाएगा, और तत्व में विश्वास करो तो बंधन बंधन होगा, जन्म मरण होगा। इस वास्ते तत्व में भेद नहीं होगा, पर व्यवहार में भेद होगा। कहते वही खून उसमें, कोई खून उसमें, क्या फर्क पड़ा इसमें? तो हम कहते व्यवहार में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? कोई मार्ग पूछे कि मार्ग किस है, कैसे होगा चल जाओ, ऐसे चल जाओ ऐसे हो जाएगा, मार्ग कौन सा है, अब मार्ग ये रहेगा, लड़ाई हो जाएगी। अब इनमें फर्क है क्या? यूं कहो चाहे यूं कहो, फर्क क्या पड़ा? खून वही है, हड्डी वही है, चमड़ा वही है, एक ही है। एक होते हुए व्यवहार नहीं करोगे, कहे रास्ता कौन सा है, कहे बताओ ये है, लड़ाई हो जाएगी, पता पूछेगा, चलिए बता ठीक हो जाएगा। ऐसे चंदन चढ़ाओ, तीर्थन चढ़ाओ, अब वो चढ़ाएंगे। ये विधि है, वो तो विधि वैसी होनी चाहिए जैसी है वैसी, कि उसमें फर्क क्या है ऐसा? अब माँ भी वही है, बेटी भी वही है, बहन भी वही है, शरीर तो हमारा सबका एक ही है। एक होते हुए क्या एक करोगे, एक बर्ताव करोगे? एक बर्ताव कर सकते नहीं, और करोगे तो प्रलय होगा और पतन होगा और नरक होगा। आपको समझना चाहिए, शास्त्रों ने मर्यादा बनाई है, किसी साथ द्वेष नहीं, किसी साथ बैर नहीं है, सबका हितेशी बना है, परंतु पतन नहीं करना है, नरकों में नहीं जाना है। इस वास्ते आदर उनका करो, जैसे आप सदा दे रहे हो, और आप हिंदू और हिंदुओं को दे रहे हो, अरे भूखा मुसलमान है तो उसको भी रोटी दो, उसको भी अनाज दो, क्योंकि भूखा है। यहाँ पर एक करो, अन्न है, जल है, वस्त्र है, औषध, ये चार चीजों के लिए अभावग्रस्त पात्र हो जाता है। परंतु सोना दान करो, गौ दान करो, बेटी दान करो, ये कैसे होगा? ब्राह्मण है वो क्षत्रिय को कैसे जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण को बेटी कैसे लेगा, कैसे देगा? वो अपनी अपनी मर्यादा में करो, सामान्य रीति से सेवा सबकी करो, सबका हित करो। हमारी संप्रदाय उन दो है तो निंदा मत करो, काट सांट मत करो। मुसलमान कुरान शरीफ में आया है कि जो मूर्ति माने उसको मार दो, जो मुसलमान को नहीं बोले नहीं भाई उसको मार दो। ये छपे हुए देखी है मैंने, हमारे हिंदुस्तान कभी ऐसी बात नहीं आती कि जो हिंदुओं को नहीं मानू उनको मार दो। सेवा करने की आती है सेवा करो, कभी कहते तुमको मार दो, तो ये बात ग्राह्य नहीं है, ये बिल्कुल पक्षपात की बात है। परंतु जो सबकी सेवा करो, तो मुसलमानों की करो, ईसाइयों की करो, बौद्धों की करो, जैनों की करो, सबकी सेवा करो। आत्मोपमे, जैसे शरीर में हमारे भेद है, अंगुली भेद होता है, हाथ भेद होता है, हाथों में दायां बायां खेत, दोनों हाथ दायां बायां हमारे दोनों, जिसमें दान पुण्य आदि करते हो इन्हें करना चाहिए, टट्टी पेशाब साफ करो तो इन्हें करना, इसे करना चाहिए। ऐसे नहीं टट्टी पेशाब इस हाथ से करें, अच्छा टट्टी पेशाब उसी हाथ से खावें, हाथों में फर्क है। स्नान करो तो स्नान करते हुए नाभि से ऊपर ऊपर ये दाईं हाथ फेरना चाहिए, और ये नीचे पैरों का और हाथ फेरना, स्नान करते हुए बाएं हाथ फेरना चाहिए। ये शास्त्र की विधि है। अब दाएं बाएं में क्या फर्क है? मन कांटा लगे किसी हाथ में तो बरोबर पीड़ा दूर करने के लिए दोनों बरोबर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाया हाथ के कांटा लग गया तो क्या हर्ज है, ऐसा नहीं है। वो हर्ज बरोबर है, दाहिने के लगो, बाया के लगो, पैर में लगो चाहे हाथ में लगो, कांटा निकालना है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। अपने शरीर की उपमा देखो, ऐसे शरीर की उपमा देख करके दुख दूर करना, सुख पहुंचाना, मात्र शरीरधारी हो, मनुष्य नहीं, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, गधा हो, सुअर हो, कोई जान हो, अगर उसकी पीड़ा तो पीड़ दूर करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। इसमें भेदभाव मत करो, पशु पक्षियों में मत करो, मनुष्यों में कैसे भेदभाव होगा, उसको आराम पहुंचाओ, सेवा करो, ये उनका काम है। तो एकता करो तो ऊपर की एकता नहीं है, ऊपर की एकता होती है खरबूजे की, ऊपर की एकता नहीं होती है, भीतर की एकता खरबूजे की, और भीतर से एकता खरबूजे की होती है, और भीतर से अलग अलग होता है नारंगी संतरा, तो संतरा छिलका तो एक है, बिंदे न्यार न्यारी, ऊपर साथ में खाए पी के एक कर दिया, भीतर में पक्षपात है, भाई भाई में उनमें पक्षपात है, ये एकता आजकल की है, ऊपर ऊपर की छिलका एक न्यारी न्यारी कड़िया न्यारी न्यारी, उसमें भी तंतु है केसर है वे अलग अलग, एक कड़ी में भी केसर अलग अलग, ऐसे भाई बंधों में एक एक, एक घर में मोट दिया बाप ने तो और को दे दिया, माँ ने और दिया, बेटे ने दूसरा दिया, घर में बैठे लड़ते हैं, ये एकता है आजकल की, ये एकता एकता नहीं है, ये महान भ्रष्ट पतन करने वाली चीज है, ये खरबूजे की तरह एकता हो, बाहर से अलग अलग लकीरें दिखे, चीर देखो तो पता ही नहीं भीतर से, ऐसे बाहर से भरण है, आश्रम है, उसके अनुसार स्त्री है, पुरुष है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बेटी है, स्त्री है, इसका अलग अलग बर्ताव ठीक तरह से करो, बाहर से एक है, भीतर में सुख माँ को भी पहुंचाना है, बाप को भी पहुंचाना है, बहन को भी पहुंचाना है, बेटी को भी पहुंचाना है, किसी को दुख न हो, किसी के कष्ट न हो, किसी की बुखार न हो, वहां फर्क करो तो ये गलती होती है, परंतु बर्ताव ये करो तो महान गलती होगी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यस्तिनी सुन से सुभा कैसा पंडिता समदर्शन, तो वहां समदर्शन संवर्तन नहीं है, समवर्ताव कर ही नहीं सकते, क्या गाय को दू कुतिया को दू हो, कोई दुख न हो, किसी के कष्ट न हो, किसी की बुखार न हो, वहां फर्क करो तो ये गलती होती है, परंतु बर्ताव ये करो तो महान गलती होगी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गव्यस्तिनी सुन से सुभा कैसा पंडिता समदर्शन, तो वहां समदर्शन संवर्तन नहीं है, समवर्ताव कर ही नहीं सकते, क्या गाय को दू होगे, कुतिया को दू होगे, क्या हाथी की सवारी करोगे तो गधे की विषय कुत्ते की सवारी करोगे, बर्ताव ये कैसे होगा, उनके दुख किसी के हो तो दुख गाय हो जाए कुत्ते के हो जाए दुख दूर करो, ये बात है उसमें। भगवान ने दिखाई ऐसे है जिनकी एकता कोई कर नहीं सकता, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में गाय में खान पान एक होगा, गाय को भंटा दिया जाए ब्राह्मण को दिया जाए, ब्राह्मण को लोपड़ी गई गाय को खिलाई जाए वो कुत्ते को खिलाई जाए, कैसे होगा, ये तो अलग अलग होगा ही, जिनमें बर्ताव जबरन अलग अलग करना ही पड़ता है, उस जगह भी संतों की भीतर से एकता होती है, ये तात्पर्य है उसका, लगा दिया एक हाल मन में लगा दिया, इसको खूब विचार कर गहरे कर देखो, एकता है वो हृदय की होनी चाहिए, उसका दुख दूर करने का करना चाहिए, किसी तरह से ऐसा करना चाहिए, तो भाई सबका हित चाहते हुए काम करो, किसी का अहित मत चाहो, परंतु खान पान सब एक कैसे हो जाएगा, बर्ताव एक कैसे हो जाएगा, भाई हो जाए कर सकोगे नहीं, बातें भले ही बताओ बनाओ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में गाय में हाथी में और कुत्ते में और चंडाल में एकता कैसे करोगे, एकता कर सकोगे नहीं, कभी नहीं कर सकोगे, बहन में बेटी में स्त्री में एकता करोगे कैसे एकता होगी, करना चाहिए नहीं, शास्त्र की मर्यादा अनुसार करो, परंतु बुखार आ जाए तो कोई ऐसे थोड़े ही बेटी की उपेक्षा करोगे, स्त्री की उपेक्षा करोगे, माँ की उपेक्षा करोगे, बहन की उपेक्षा करोगे, सबको दवाई बरोबर ठीक तरह से उसका इलाज करेंगे, परंतु बर्ताव हम उनके अनुसार ही करेंगे, तो इस तरह की ये एकता संसार ये नहीं है, भीतर से सबका हित चाहना, सबके प्रेम चाहना, सबको शांति मिले अच्छी बात है, सुख सबको पहुंचाना है, दुख किसी को नहीं पहुंचाना है, अगर ये धर्म की बात ठीक हो तो मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई हो नहीं सकती, अब कहते धर्म एक कर दो तो महान लड़ाई होगी, महान आज देख लो, पहले राज्य के लिए क्षत्रिय लोग लड़ते थे और व्यापार के लिए बढ़िया लोग लड़ते थे और काम धंधा करने के लिए ये शूद्र लोग अपना अपना काम करते थे, नाई भी अपनी वृत्त समझते थे हमारी वृत्त है ये, अब सब काम कर सब करने अधिकारी तो राज में सब लड़ते हैं, राज के लिए क्षत्रिय भी वामन भी धोबी भी चमार भी मेहतर भी राज के बोर्ड देख राजगढ़ लड़ते हैं तो 16 गुणी लड़ाई हो गई और छोटी छोटी लड़ाई होगा हजारों गुणी लड़ाई हो जाएगी हर गुणी। लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ कब होता है? एक कि जैसे ब्राह्मण है उसको जनेऊ देना है तो सब काम करने का जनेऊ समाज जनेऊ देगा। अब जनेऊ 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 के लिए थे ब्राह्मण लड़ते थे तो कोई नहीं लड़ता जनेऊ का। अब जनेऊ जनेऊ सब लड़ेंगे। पुजारी भगवान के रखना है ब्राह्मण तो ब्राह्मण ब्राह्मण भले ही आपस में लड़ो। अब समारोह को रखेंगे अब तो बैतरों को रखेंगे पुजारी। क्या होगी दशा? आज अच्छी बात दिखती है लोग जानते तो है नहीं। अनजान अनजाना के हाथ में चीज दी हुई है उसका दशा क्या होगी? इस वास्ते अपने स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। गीता क्या अमृत कह रही है। तो इस तरह से ये बारे की एकता एकता नहीं हो गई। इस वास्ते ये सब जगह जाते हैं हम मस्जिद वही जाते हैं वही जाते हैं। ये जानने से आप कल्याण चाहते हो तो मत जाओ और इसमें वोट चाहते तो हरी मर्जी। वोट में फोट होगी कुछ मिलेगा है नहीं अंत में मुश्किल होगी अंत में। यहाँ तो मिल जाएगा राजराजी मिल जाएगा वो भी भाग्य से मिलेगा सबको नहीं मिलेगा। इस वास्ते भाई अपने धर्म का त्याग मत करो। ये उपासना के विषय थोड़ी बात बताई है। दूसरी बात और बताता हूँ मैं। किसी धर्म का हो किसी मत का हो किसी मजहब का हो पर मदिरा है मांस का सेवन करना सबके लिए निषेध है। उड़िया बाबा से एक ने पूछा बड़े अच्छे संत थे पूछा कि महाराज मुसलमान तो गोकशी करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष भगवान राम 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 करो गोकशी हो जाए तो मेरे से पूछो हो ही नहीं सकेगी। ठीक तरह की उपासना करेगा भजन करेगा वो गऊ कहता करेगा। हत्या कौन करते हैं? ईर्ष्या जिनको है हिंदू का काम है जो हिंदुओं ने मारते मारो इस बात मुसलमानों की मारो हिंदुओं की मारो। वृंदावन में अभी लड़ाई हुई गोस्वामियों के मैत्रों की तो कई सूरों को मार मार के फेंक दिया जमुना जी में। अब सूरों की बेचारी क्या उनका अपराध ही नहीं मन सूर रखते हैं मैत्र मैत्रों के गोस्वामी लड़ाई जिन्होंने मारे अब सूरों को मार मार के जमुना जी में फेंक दिया। ये अभी की बात है तो ये बहुत दोष देश की बात है बैर की बात है। और बैर की बात करें सूर को मारो ऐसे बैर के कान से गायों को कोशिश करो। असली कुरान में हमने सुफा हुआ है कि तुम अगर उसको बलि चढ़ाओ तो बलि चढ़ाओ तो अपने बेटे की चढ़ाओ अपने प्यारा सा प्यारा है उसकी कतर करके दे बलि चढ़ाओ। ऐसी बात हुई है जिसमें गायों को मारेंगे हम तो ये क्या है? ये द्वेष पैदा करने की बात है। आप उसमें बैर की बात है बैर की बात मत रखो भाई। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र कर्ण अद्वेष्टा सर्वभूता नाम निर्वैर सर्वभूतेषु यह समेदी पांडव। किसी प्राण के साथ बैर मत रखो द्वेष मत रखो। अब एकता करते करते अभी एक मंत्र को लेकर द्वेष फैलाया उससे कितनी कत्ल हुई है मनुष्यों की कितने हिंदू मारे गए कितने मुसलमान मारे गए। ये पक्ष ले जात का और उस पक्ष की याद करती है सहायता वे कहते मैं सहायता करा सहायता नहीं सत्यानाश हो रहा है। उन मुसलमानों को फिर कहते 100-100 हजार कितने रुपए देते हैं जो मर जाए उनके रुपए देते हैं और हिंदू मर जाती है परवाह ही नहीं है। ये राज रहेगा? ऐसा राज नहीं रह सकता। जहाँ प्रजा में भी दो भेद कर दिया तुमने प्रजा राज करते हुए वो राज क्या करोगे आप? तो राज तो उसी का रहेगा जो शिक्षा देगा। इस वास्ते मदिरा मांस आदि का सेवन करना जो धर्मात्मा है उन्होंने सब निषेध किया है। नागौर में वो मेरे को याद नहीं है मुसलमान एक भक्त हुए हैं वो बाहर गए थे वहां से आते हुए वो बैठे कहीं ठहरे थे वहां ठेठ पहुंचे तो कीड़ी आ गई। तो कीड़ी आ गई तो कीड़ी को छोड़ने के लिए वहां गए जहां बैठे थे वहां जाकर कीड़ी को छोड़ा कि इसकी बेचारे कुटुंब रह जाएगा इसके माँ बाप छोरा छोरी वहां रह जाएंगे तो वहां जाकर छोड़ रहा है। वो मकान है मुसलमानों का बहुत वृक्षावली दिखती है ऊपर सुई का नाम है तार किशन हुए तो ऐसे में मुसलमान थे। अब वो गौ को मारेंगे कीड़ी एक चढ़ गई उसके लिए ठेक आने पर कई कोस पैसे जाना पड़ा कि कीड़ी वहीं छोड़ो उनका कुटुंब वहां रह गया। हाँ 14 मील गए बताओ, तो वो गवई क्या करेगा? जो अपने धर्म का ठीक पालन करेगा, तो हिंदू क्या मुसलमान क्या है, कोई हो बोले, जिसको कल्याण करना है वो ये नहीं करे, तो व्यवहार में भी सच्चा रहना है, नरकों में नहीं जाना है, तो पूरे पूरे व्यसनों का त्याग करो। सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, खेल देखते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय मिला है, उस समय को हत्या करने में, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने में समय लगाते हो, तो करते तो खर्च वो समय जो भगवान मिल जाए और आगे नर्क मिले महान भयंकर, उसमें वो खर्च करते हो। तो वह चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई कान हो, पाप करने वाले को तो भोगना पड़ेगा ही। तो इस वास्ते भाई और बहनों से कहना है कि सब अपने धर्म का पालन करो, किसी की हत्या मत करो, किसी का भी नाश मत करो, अपना धर्म का पालन करो। परंतु एक बात और है कि आपके बहन बेटी पर, आपके धन पर, आपके जमीन पर कोई हर्जा करता हो और राज रक्षा न करे, तो उस जगह क्षत्रिय धर्म होता है आपका। आपको तलवार लेनी चाहिए अपनी रक्षा के लिए, रक्षा नहीं मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। अत्याचारी है उनको तो जो अग्निदेव विषदेव जो क्षेत्र दार धनहार बहुरी बकात सत अवैध वैध खटकार छह काम करने वाले ब्राह्मण भी हो, वेदांत पारगामी हो, तो भी छह काम करने वाले मार डालो। ये बताया पापियों को, जिसे पाप से वो छूटे अगाड़ी पाप न करे। अग्नि लगाए थे घरों में, जहर देर दूसरों को मार दे, गायों को जहर देर मार गए, मनुष्यों को जहर देर के मार दे, और आपने जमीन को हर फले जन्म तुम्हारी खोस ले, और स्त्री को अगर ले जाए, स्त्रियों को सामग्री ले जाए, मोल लेकर के स्त्रियों को ले जाए, कन्याओं को ले जाए, ऐसे स्त्रियों को लेने वाले क्षेत्रदार धनहार और धन ले ले, धन लूट ले और शस्त्र लेकर मारने को आ जाए, ऐसे छह आदमी ब्राह्मण होते हुए मार डालो उसको। ये हमारे शास्त्र में कहा है। तो वहां छात्र धर्म होना चाहिए, जहां शास्त्र रक्षा राज नहीं करता, तो नहीं तो ये काम राज का है, ये प्रजा का काम नहीं है। प्रजा पुकारेगा हमारे ऐसे हो रहा है, मैं प्रजा पुकारे किसे, डाकू जगह डाका पड़ता था धन लूटते थे, वे राज आज धन लूटते हैं डाका पड़े, वो रोवे किसके गाड़ी, किसको कहेंगे हमारा डाका पड़ गया, किसको पुकारे, जो राजा खुद डाकू हो गए। तो आजकल का जमाना बड़ा विचित्र है, ऐसे विचित्र में सबको छात्र धर्म लगना चाहिए और ईमानदारी से चलना चाहिए, बेईमानी किसी करने करना नहीं चाहिए। ये हिंदू कोड बिल आया तो मैं मद्रास इधर बहुत घूमा हुए थे हिंदू कोड बिल का निषेध करने के लिए। डूंगरगढ़ की बात है, कोई युवा वहां जानते ही होंगे, कोई हो तो थोड़ी पुरानी है। मैंने सभा करी डूंगरगढ़, बहुत सभा इकट्ठी हुई, मैंने व्याख्यान दिया। मुझे ये जो है कि दूसरे गोदी दूसरे से आ जाए, एक दूध बराबर करना चाहिए, एक माँ के बेटा हुआ वे बेटा बेटी ब्याह नहीं करे, काकर बेटी के सर लोकल हो गया और वे आ जाओ दूसरे से और गोद आ जाओ। हिंदू कोर्ट बिल में ऐसे ऐसे काम थे, तो मैंने विरोध किया। विरोध किया तो एक जना सभा में खड़ा होकर बोला कि देखो महाराज, आज समझते नहीं हो, आप मानते हो कल दुख है आज, तो कल युग में ऐसा होगा, ऐसे व्यभिचार होगा, अनाचार होगा, हत्या होगी, झूठ कपट होगा, बेईमानी होगी, दूसरे की चीज दूसरा हड़पलेगा, दूसरे को दी जाएगा, ऐसी बात ही तो कल युग में ऐसा होगा, आपके पुस्तकों में लिखा है कि नहीं लिखा है? भाई हमें लिखा तो है। तो फिर आप कैसे निषेध करते हो कि ये मत करो? आप करते हो वो तो शास्त्र से विरुद्ध काम है, और ऐसा व्यभिचार हो जाए, दूसरे दूसरे गोद चला जाए, दूसरे का तो ले ले, ये तो कलयुग में होगा, तो कलयुग में हो रहा है, आप उसका निषेध करते हो, तो शास्त्र विरुद्ध काम करते हो, आप प्रसार करते हो, ये तो ऐसा होना चाहिए, कैसे करते हो आप ऐसा कहा। मैंने उत्तर दिया, उत्तराखंड में पहाड़ों में वर्षा हुई, वर्षा हुई तो वहां से तार दे दिया कि गंगा जी के किनारे हैं, वे गांव दूर चले जाएं, बाढ़ आएगा, बहुत ज्यादा पानी बढ़ा है तो ज्यादा आएगा, तो फिर क्या करे गांव वाले, क्या भेड़ बकरी गाय भैंस सब लाज गंगा जी के किनारे रख दे, आप भी आकर गंगा जी के किनारे बैठ जाए, क्यों तार आया है डूबेंगे तो अपने पहले ही बैठ जाओ, ये बुद्धिमानी है क्या? तार आया तो उसका अर्थ है कि बचो, बाढ़ आवेगी, मर जाओगे कहीं। इस वजह से शास्त्र ने लिखा है तुम बचो, कलयुग में ऐसी बाढ़ आवेगी अधर्म की, उससे बचो, बचने के लिए लिखा है। कहीं लिखा है कलयुग में ऐसा क्या करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, डाका डालो, ऐसा लिखा है? आज्ञा दी है क्या? ऐसा होगा ऐसा लिखा है? करो नहीं लिखा है, होगा ऐसा लिखा है? तुम सावधान रहो, कलयुग में ऐसा ऐसा होगा। व्यभिचार करते बहन बेटी को नहीं समझेगा, माने ही नहीं। अनुजा तनुजा मेरी झूठी बहन है कि मेरी कन्या है, ऐसा नहीं मानेंगे। ऐसी ऐसी बातें घटना मेरे पास आई है, ऐसी विलक्षण घटना है जो कहने में शर्म आती है। ऐसी ऐसी विलक्षण घटना, छोरी के ताऊ से गर्भ रह गया, कुमारी छोरी है। एवं क्या कहूं, मेरी बात आई मेरे सामने बात करी है। एक माई ने बिचारी ने कहा मेरे बेटे से मेरे बेटा हो गया, गर्भ गिराया वो। फिर ऐसी ऐसी दशा हो रही है आज कल युग में, सच्ची बात है ये। तो इस वास्ते पाप से आप सावधान रहो, ये थोड़ा कि ऐसा करो कल युग में, ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कल युग में होगा उसे पहले सावधान रहो। कहते समय के अनुसार चलो, समय अभी ऐसा ही है तो उसके अनुसार ही चलो। तो समय अनुसार चलो तो चल जाओगे, गर्मी आवे तब गर्मी के अनुसार चलो। अब ठंडी रोटी मत लो ठंडी, फिना पानी भी मत पियो ठंडी, छाया में मत बैठो, लू आवे वहां बैठो, और खाओने बड़ा खाओ तेल का, और पानी पियो गर्म, क्योंकि गर्मी के दिन है। समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, मर जाओगे। ठंडी आ जाए तो कपड़ा मत ओढ़ो, मंगन मत दो, समय ऐसा ही। अरे समय से रक्षा करो कि मरो, ऐसे कलयुग का समय आया है। समय के अनुसार कर रहे हैं, समय ऐसा ही है। तुम तो पुरानी बात कहते हो, हम तो पुरानी बात बचने के कहते हैं, तुम मरने की बात तैयारी कर रहे हो। समय अनुसार चलो, जब शीतकाल आता है कपड़ा रखते रखते जाड़ा लग जाता है। अच्छे अच्छे घरानों में, वैष्णव घरानों में छोरे ऐसी रकम पैदा हो गई आज, हवा लग गई आज की, सी लग जा चलो निरक्षा करते करते। इस वास्ते तुम सावधान रहो, सावधानी के लिए ये कहा गया आगे कल तुम में ऐसा होगा ऐसा होगा। ये थोड़े भी ऐसा करो भेजाओ उसमें, अपनी रक्षा के लिए कहा गया है। हम स्वतंत्र विचार गधे का है, गधा का खड़ा कर दो यही मुंह देगा, क्योंकि स्वतंत्र विचार है वो। सूचना विचार करेगा सत्संग है यहाँ, प्रसाद नहीं करना चाहिए, विचार करेगा। कुत्ता जो खाएगा, जो ब्राह्मण के रसोई में क्या पैर धो कर जाएगा कुत्ता, हमारा सुंदर विचार, हम खुशियां से करेंगे खुशियां। जो कुत्ता है गधा है बंदर है ये करते हैं, यही मनुष्य हो जाएंगे। स्वतंत्र विचार ऐसा हमारे, तो हम लगेंगे फकीर नहीं है क्या है, हम तो स्वतंत्र है। अरे ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तो उच्छृंखलता है। उच्छृंखलता मर्यादा भंग करना है। स्वतंत्रता वो है जिसमें आपको पाप और पुण्य से ऊंचे उठ जाओ, फिर पाप पुण्य आपको लगेगा नहीं ऐसा, पर वो मर्यादा भंग नहीं करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष यज्ञदा करती श्रेष्ठ ऐसा श्रेष्ठ आसन करते हैं, उनके लिए कर्तव्य नहीं है। इससे नाहंकृतो भाव बुद्धि न लिप्यते हिमान लोकानि निबद्ध थे। 18वां अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वो दुनिया मात्र को मार दे तो उसको पाप नहीं लगता, ये स्वतंत्रता है। तो मारेगा नहीं कभी, स्वार्थ है नहीं, बुद्धि में लेप नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, तो उसके लिए कहा तुम स्वतंत्र हो। अब आप उस श्रृंखल स्वतंत्र है, नौका में इधर बैठे हैं, उधर नौका में भेजते थे हम भी, तो नौका से उतर ले, वहां देखा हुए नौका से उतरते हैं तो हम भी उतर जाओ, उतर ही जाओगे, मर जाओगे, डूब जाओगे कि उतर रहे हैं वे, और वे उतर पार पहुंचे हुए उतरते हैं, बीच में उतर जाओगे। तो किसके लिए कौन बात लिखी है, हम स्वतंत्र विचारों के। स्वतंत्र विचार नहीं, कुत्ता और गधों का विचार है ये, स्वतंत्र उनका होता है स्वतंत्र विचार। को शास्त्र की बात है, अपने पर शास्त्र अनुसार। मैं तो नहीं कहता मुसलमानों को भी तो हिंदू बन जाओ। आर्य समाजों में जाना काम पड़ा है, जन्माष्टमी के दिन जयपुर में आर्य समाजों गया, कलकत्ते में रहा, आर्य समाजों में जन्माष्टमी के दिन गया हूँ, काल जाओ काम करूँ। वे भी मेरे से प्रेम करते हैं, बुलाते हैं मेरे को, वे निराकार मानते हैं, तो मैं कभी निराकार खंडन नहीं करता। निराकार का उपासना करो, आपकी उपासना आपकी अपनी अपनी करो, पर मर्यादा भंग मत करो। मर्यादा भंग करो तो आपकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। इस वास्ते किसी काट सांड करना किसी जरूरी मत करो, खराब खाना पीना मत करो, अनाचार व्यभिचार अत्याचार मत करो, अखाद्य मत खाओ, ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। दूसरों की बहन बेटी को बुरी दृष्टि से देखते हो, महान भयंकर पाप लगेगा। बाली ने कहा है भगवान श्री राम जी ने कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। उसमें देखा है कि भी अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसन कन्या समय चारी इन्हें कुदरत दिख लोग जो हुई ताई बधे को जो पापन होई। अनुज बधु छोटे भैरी स्त्री सुनते अगले ने भगनी बहन हो वो और पुत्र के बधु हो तो इनको कन्या के समान समझो, इनको कुदृष्ट देखता है कुदृष्ट उसको मारने का पाप नहीं लगता। आज इनके शहर प्यार कर लो, इसे शादी कर लो। छोरियों को भी ऐसा चाहिए कि सावधान रहो, भाई के लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, धर्म की मर्यादा एक करो तो बहुत खराब काम हो जाएगा। दूसरों की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो इसकी दशा क्या होगी देखना, फिर पता लगेगा, अभी पता नहीं लगता है। कम जो ऊते समय बीज बोते हैं उस समय पता नहीं लगता, फल लगता है तो पता लगता है। अब तो बीज बो जा सब बरोबर है, घास है जो गेहूं भी ऐसा ही है, बाजरी भी ऐसी है, जो भी ऐसा ही है, इसलिए कि ज्वार भी ऐसी है, मक्का भी ऐसा ही है, पर फल लगेगा तब देखना तो वैसे अलग अलग होगा। इस वास्ते अब जो कर्म करते हो इसका फल लगेगा, तो जितना खराब काम कर रहे हो तो उसका नतीजा बहुत खड़ा होगा। अरे भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान को हमने देखा नहीं, लोग यही कहते हैं भगवान हम कैसे माने, भगवान को हमने देखा नहीं। मैं कहता हूँ बाप को किसी ने नहीं देखा है, किसी भाई ने बहन ने बाप को देखा हो तो मेरे हिसाब ना हो बताओ, मेरे को बाप को देखा है आपने, आपको हमारे बाप को देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति को देखा है, लोगों ने कहा कि बाप है तुम मानते हो, माँ के कर्ण से बाप मानते हो, जिस समय वो बाप बना उस समय आपने देखा है कि आपका जन्म ही नहीं हुआ, 10 महीनों के बाद जन्म हुआ है, किसने देखा है बाप को बताओ, मानते हो नहीं? जो ईश्वर को नहीं मानते वो बाप को भी नहीं मानते, तो क्या उसकी बात ठिकाना नहीं, इतने के बात बाप ठिकाना नहीं जाने हो भाई। कहते हम माँ को मैंने बाप को, माँ बाप को मानते हो, माँ को याद है किसी को, इतने भाई बहन बैठे हैं किसी को माँ की बात याद हो कि मैं इस माँ से जन्मा हूं तो बताओ भाई का लाल कोई बताओ। माँ बाप को कहने से मानते हो, ईश्वर को नहीं मानते, दशा क्या होगी, कहाँ जाओगे आप, क्या मैंने देखा नहीं, तुम्हारी दृष्टि कितनी है देखने की, कितनी शक्ति है देखने की, आंख खुलती है, शास्त्रों से देखो, संत भावताओं से देखो, जिनका अनुभव हुआ उनको देखो, हमने देखा ही नहीं कैसे माने, औषधि लोग हमने देखा ही नहीं सर, इस औषधि से ऐसा होता है, देखा ही नहीं, सब देख करके औषधि लेते हो, डॉक्टर के डर ले हो, वैद्य कहता है ये दवाई तो ठीक है, किसी हमने देखा ही नहीं इसका रोग कैसे दूर होता है। अरे देखा तो भाई आंखों से देखता है, ये तो बड़ी छोटी दृष्टि है, बुद्धि से देखना है बड़ी दृष्टि है, शास्त्रों से देखना है बड़ी दृष्टि है, आध्यात्मिक तत्व से देखना और दृष्टि है, दैविक दृष्टि होती है, भौतिक दृष्टि होती है, आध्यात्मिक दृष्टि होती है, चक्षु चक्षु देखना तो दूसरी चीज है, ये तो बहुत स्थूल है। आप देखो साग हमने देखा ही नहीं, आपने अपने जन आपके शरीर कैसे पैदा हुआ देखा है आपने, महीनों और परसों तो होश नहीं था बच्चे होने पर भी कि कैसे हम पैदा हुए, हमें तो बचपन की बात याद है, छोटा था मैं तब तो लोग पूछते कि बस तू कहाँ से आया, नहीं भाई कहाँ से आया, तो ऊपर से बरसा इस लिया, किसी ने कहा कि शेर पर लून देकर तेरे को लिया है, तो लिया होगा कहाँ से पता ही नहीं, आज छोरे बता सकते हैं, आज तंप गिर गया है मस्तिष्क गल गया, 10-10 वर्षों के छोरा छोरी नंगे छुटते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से, आज 2 वर्ष का छोरा भी नंगा नहीं उसको पढ़ा देते हैं, इतनी भ्रष्ट हो गई है बुद्धि, एक ये झूठ कपट भ्रष्ट पैदा हो भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, ज्यादा टैक्स बढ़ाने से और जबरदस्ती करने से आचरण भ्रष्ट हो गए, और ये परिवार नियोजन कर रहे चरित्र भ्रष्ट हो गए, विधवा की परवाह नहीं, सुख स्त्री की परवाह नहीं, कन्या की परवाह नहीं, क्यों गोली खा लेंगे, चरित्र भ्रष्ट हो गए, आचरण भ्रष्ट हो गए, अपनी ईमानदारी को नष्ट कर दी, ईमानदारी नष्ट हो गई, सत्य नष्ट हो गया है, इतना इतना काम हो रहा है इस राज्य के बीच में, कितना अनाचार हो रहा है। और फिर वो करते करते अब क्या करे कि अब अभी धर्म छोड़ो, उसको खड़ा होने का आदेश मिलेगा। दो छोरा जिसके वो आदेश मिलेगा, तीन चार छोरा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। महान अन्याय है, घोर अन्याय है, प्रजा का सत्यानाश करने के लिए है। कि दो हम और हमारे दो आप मैं पूछूं कि प्रजा होने की तो प्रजा की रक्षा के लिए फौज होगी, मिलिट्री होगी, मिलिट्री में कौन भर्ती होगा? दो छोरा घर का काम भी पूरा नहीं कर सकेगा, मिलिट्री में कौन भर्ती होगा? साधु कौन बनेगा, उस शिक्षा कौन देगा? यार मिलिट्री में कौन जाएंगे? जिनके 10 15 20 50 छोरा है वही जाएंगे मिलिट्री में। आज उनको अस्त्र शस्त्र नहीं है तो हिंदुओं को मारते हैं, फिर अस्त्र शस्त्र हो जाए, दंगा हुआ तो मारो, फिर आपकी क्या दशा होगी? आज मानते नहीं कहना, बड़े बड़े कहते हैं परिवार नियोजन में कैसा होगा, क्या खाएंगे, कितनी बुद्धि भ्रष्ट होगी, अकल गद्दे चढ़ी है, होश नहीं है। तुम तो कहीं कहते हो कि अंदर कहीं अन्न तो पैदा हुआ है इतना साल, मिन आज ज्यादा हो जाएंगे। कि मेरी जमी बंजर पड़ी है बिना खेती के, आदमी होंगे तो खेती ज्यादा होगी, तो खेती करते हैं उसमें आप ही नहीं बिक्री करके औरों को देते हैं, ऐसे खतरे में पैदा होती है खेती में। अब खेती कौन करेगा? खेत तो अब दो छोरा हो तो खेती कौन करेगा? मिलिट्री में कौन जाएगा? वो बैंक ये बड़े बड़े मशीन लगा करके कारखाना कौन खोलेगा? जिससे पैदा होती वो क्या दशा होगी? यार दरिद्र होती दशा क्या होगी आपकी? जरा सोचा है आपने? तो यार निजन करो, लाग रहे हैं भाई बंधु सब जो जोरों से लग रहे हैं कि नसबंदी करो, कि ऑपरेशन कराओ, कि बच्चा नहीं हो जाए। ये महान भ्रष्ट और पतन होने की बात है। बताओ कौन साधु बनेगा? दो सोने में साधु बनेगा कोई? कोई अध्ययन करेगा, आध्यात्मिक उपदेश देगा? कहां भक्त बेचारे एक दो सोरे को घर का काम करने को भक्त नहीं मिलेगा, कौन होगा? हमारे शास्त्र में कितनी गहरी गहरी बातें हैं, कौन पढ़ेगा? कौन फौज में जाएगा जो रक्षा करे आपकी? कौन जाएगा? फिर वो ही जाएंगे जो मारने वाले हैं। एक मुसलमान के 60 लड़का लड़की 3 ब्याह किया है और चौथा ब्याह करेगा, ऐसी बातें मैंने सुनी है। 60 लड़का लड़की उनके पास कहना होता है, मर्दमशुमारी करे जिसमें हिंदुओं की कितनी जनता कितनी है सरकार ने प्रकाशित नहीं किया। 40-50 करोड़ इन नियोजन से हिंदू कम हो गए हैं और फिर कम हो रहे हैं। अब क्या करें, कहां रोए हम? तो मैं तो कह रहा हूं बहुत वर्षों से 1924-25 था उससे तो मेरे को याद है, तब से कह रहा हूं मैं, मेरी बात सुनते ही नहीं, कि स्वामी जी समझते नहीं। अरे भाई तुम पाप करते हो, गर्भ गिराते हो, गर्भ गिराते हो, सोरियों को गर्भ गिरा दिया। अब 3 सोरा 1 सोरी, अब के 25 वर्ष के बाद में सोरी 2 हो गई, आदमी 3-4 हो गए, किसके साथ चार के साथ कैसे करेगा? छोरियों को गर्भ गिरा दिया, अब कमरे रहेंगे तो जल्दी जल्दी आपका वंश नष्ट हो जाएगा। महान भ्रूण हत्या जैसा महान पाप, यद पापम ब्रह्म हत्या, 4 महापाप है ब्रह्म हत्या, और सोने और रत्नों की चोरी, और गुरु पत्नी गमन, और मदिरा पान, वो मदिरा पान आज कर रहे हैं सब, ये महापातक है महापातक। तो यद पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणं गर्भपात ने, गर्भपात करने का ब्राह्मण हत्या से दूना पाप लगता है, महापाप से दूना पाप वो घरों में लगा रही है। मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ, भाग मांग करके भिक्षा खाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जिसके घर में गर्भपात किया हो, घर में एक ने भी किया हो, उस घर की रोटी मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर मैं बोलूंगा तो बुद्धि भ्रष्ट हुआ आपको क्या बात बताऊं, सीधी बात बता ही नहीं सकूंगा क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इस वास्ते जिन घरों में गर्भपात किया है उन घर की रोटी मेरे को मत देना। मैं कह देता हूँ प्रातः अब कुछ छिप कर देते, मैं क्या करूँ, मेरे को पता तो है नहीं। तो आप लोग कृपा करो बहनों माताओं, जिन्होंने गर्भपात किया उनकी रोटी मत देना, पानी पीने का पाप लगता है उनका, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, महापाप कर दुगुना पाप लगता है। गर्भपात करो दशा क्या होगी, छोरियां नहीं होगी तो किसके साथ ब्याह होगा, जब ब्याह नहीं होगा तो पैदा क्या होगा, फिर आपका वंश कहाँ रहेगा? कितने ऊंधे ऊंधे आप काम कर रहे हो, महान महान अत्याचार कर रहे हो, नतीजा बड़ा खराब होगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो ध्यान दें, ऐसे उपासना के विषय की बात, ऐसी बात मेरे को पूछो, मेरे को क्या पता कि आपके हृदय में क्या शंका है, पूछो तो बताऊ मैं, मेरे आग्रह से बताऊ। अरे मैं आग्रह नहीं करता, मेरी बात मानो, युक्ति संगत बात है, आपके चित्र तो मानो, अरे नहीं मैं मानो तो मेरी शंका करो, आप उनके ऊपर शंका बताओ, संदेह हो मेरे सामने प्रकट करो, उनका वेतन मेरे को आएगा जैसे मैं दे दूंगा भाई, सबका उत्तर दे ही दूंगा, मैं ऐसी हेखी नहीं बगाड़ता हूँ, परंतु उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये दो बातें आई आज मेरे सामने, एक तो उपासना के विषय में, एक आचरण के विषय में। आचरण शुद्ध करो, व्यस्त मत करो, अन्य दल के सिवाय मैं तो सुपारी खाओ, सौंफ खाओ भोजन के बाद में, वो भी आपके ठीक नहीं है, कोई पाप नहीं है उनमें। पान खाओ, सुपारी खाओ, पाप नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए पाप लिखा है, सन्यासी के लिए है, उन्होंने आप कृष्णों के लिए पाप नहीं लिखा है, परंतु व्यसन आपको रह जाए, जरूरत पड़े ये बिल्कुल पराधीन हो जाओगे। एक अन्न एक जल, दो के बिना तो शरीर काम नहीं देता, अगर काम देता हो तो रोटी खाओ, पानी मत पियो, अरे पानी से काम चले रोटी मत खाओ, मैंने दो के बिना शरीर रहता नहीं, इस बार दो के सिवाय तीसरा कोई भी आप अगर व्यसन लगा लोगे, खाते आदर बढ़ा लोगे, महान पतन होगा, चाहे कोकनर मदिरार भांग तमाखूर लमर ये करते, कैंसर की बीमारी होती है सिगरेटों से, वो पीते हो बस बीमारी होती है, फिर रोते हो, तो क्यों ये आफत करो, अन्न जल करो, खर्चा नहीं होगा, सीधे रहेगी, बीड़ी सिगरेट पियो, पैसों का धुआं कर दिया, स्वास्थ्य का धुआं कर दिया, स्वतंत्रता का धुआं कर दिया, मीने पीने वालों के विचारों को नष्ट कर दिया। एक बाबा जी को पूछे कि आप मारा पीते धूम्रपान करते हो, कि भाई हम गाड़ी में से लोग पिला दे रहे, क्या करें, आ जाता है हमारे पीते तो नहीं पाए देते, लोग जबरदस्ती कर देते, तो उनके नाक जलने लग जाए, बेचारे को दुख हुए, तो बिना कारण अच्छे पुरुषों को तंग करते हो, अरे आप क्या करते हो, आप पराधीन होते हो, पैसों का धुआं कर दिया, स्वतंत्रता का धुआं कर दिया, अपने स्वास्थ्य का धुआं कर दिया, जिस किसी को पालना हो उसके पास लगा तेरे तो बास लगा दिया, पैसों में पास लगा दिया, स्वतंत्रता में बास लगा दिया, हर जलाते हैं भरा हर वर्ष गया है धीरा हर वर्ष है, और फिल्म पीने में मना वहां जाता है दूसरे गांव में मुंह में पानी आ गया, ये व्यसन हुआ, ये दशा आपकी हुई, क्यों प्रतंत्र हुआ ऐसे व्यसनों के, ठीक तरह से पियो, अब चाय पिया पानी गंदा करके चाय पियो, दूध पियो, मक्खन खाओ जो भी तरह, पर मक्खन खाने का लखन ही नहीं है, लखन ऐसा ही पानी पीना, मेला पानी पीने के लखन लगूंगा, अब कैसे मिलेगा, काम तो ये करते हो आप, दशा क्या होगी, अभी वर्तमान में पराधीन हो जाओगी,